प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 2 मई 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज के इस लाइफ मैनेजमेंट के लिए जिस विषय को मैंने चुना है वह विषय आप यूं कह लीजिए कि करंट से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन किसी एक बहुत लोकप्रिय व्यक्ति के स्टेटमेंट को मैंने इसमें शामिल किया है और वह स्टेटमेंट है विनोद खन्ना जी का, जिनका कुछ ही दिन पहले निधन हुआ है। अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे, चैनल्स पर देख भी रहे होंगे विनोद खन्ना जी की लाइफ और उनकी सफलताएं असफलताएं और पूरी की पूरी एक जीवन यात्रा के बारे में आपको ढेर सारी चीजें मिल रही हैं। मित्रों मुझे भी वहीं से यह तथ्य मिला है। अब मैं यह तो नहीं कह सकता कि यह तथ्य कितना सही होगा या एग्जैक्ट ज्यों का त्यों है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि वो सत्य के निकट जरूर होगा। और खासकर इसको चेक करने के लिए फिर मैंने जो रजत शर्मा जी के जो आपकी अदालत प्रोग्राम आता है उसमें भी विनोद खन्ना जी का वो प्रोग्राम टेलीकास्ट किया गया था, उसको भी देखा, उससे भी मुझे लगा कि यह बात काफी सही हो सकती है। और कुल मिलाकर के बात मित्रों केवल यह है कि आपको मालूम है कि किस तरीके से विनोद खन्ना जी का फिल्मों के प्रति एक जबरदस्त आकर्षण हुआ, बावजूद उसके कि उनके पिता नहीं चाहते थे कि विनोद खन्ना फिल्मों में जाएं। उन्होंने सशर्त उनको भेजा कि जाओ और अगर तुम 2 साल में स्थापित नहीं हो पाए तो तुम लौट करके अपना एक पैतृक काम, उनके पिता काफी बड़े बिजनेसमैन थे, वो संभालना। लेकिन विनोद खन्ना को ऐसी सफलता मिली कि वो फिल्म में फिर आगे बढ़ते ही चले गए और एक समय आप जानते हैं कि विनोद खन्ना भी पूरी तरह से जो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन इनकी जो लाइन थी उसमें शामिल हो गए। भले ही वो उस लेवल के सुपरस्टार ना बन पाए हों, लेकिन फिर भी उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा थी, उनकी अपनी एक लोकप्रियता थी। और बाद में हम सब ये भी जानते हैं कि वो राजनीति में आए, राजनीति में आने के बाद वो मंत्री तक बने और लगातार ही बीच में थोड़ा गैप भी हुआ होगा, 4 बार वो अपने संसदीय क्षेत्र के सांसद भी रहे। एक बड़ी बात है, यानी कि फिल्म से लेकर के और राजनीतिज्ञ तक की उनकी यात्रा रही। लेकिन मैं इसमें जो एक छोटा सा हिस्सा है खासकर उस पर फोकस करना चाह रहा हूं दोस्तों। वो हिस्सा ये है कि जब वो अपने कैरियर के शिखर पर थे, सफल थे, उसी समय उन्होंने ये फैसला किया कि मुझे अब आध्यात्मिक जीवन में जाना चाहिए और शांति की खोज में उन्होंने संन्यास ले लिया। ये उनका वाक्य मैं कोट कर रहा हूं जो मुझे कहीं मिला है कि मैं शांति की खोज में फिर मैं संन्यास में गया। चैनल पर इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे एक गुरु की खोज थी और उसके लिए मैं वहां गया। खैर चलिए, गुरु की खोज हो या शांति की खोज हो, उससे हमारे आज के विषय पर कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। मित्रों यहां बस मैं इसी बात को लेकर के आपसे कुछ चर्चा करना चाह रहा हूं। अब आप देखिए कि जिंदगी में होता क्या है। विनोद खन्ना जी को अपनी पसंद का काम मिला, जो चाहते थे वह कर रहे थे और बड़ी बात यह है कि उसमें उनको सफलता भी मिल रही थी, यश मिल रहा था, लोकप्रियता मिल रही थी। देखिए यश और लोकप्रियता में थोड़ा सा फर्क होता है। यश मिला, लोकप्रियता मिली और साथ ही साथ वैभव भी मिला, ऐश्वर्य भी मिला, सब कुछ उनके पास था। उन्होंने अपने पसंद की लड़की से विवाह किया, जीवन चल रहा था। यानी कि सच पूछे तो ऐसा कोई कारण नहीं था या हमें दिखाई नहीं देता है जिसको आधार बनाकर के हम कह सकें कि विनोद खन्ना जी के जीवन में कोई अशांति रही होगी। देखिए अगर आप शांति की तलाश में कहीं जा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आपके अंदर अशांति है और फिलहाल वो आपके पास नहीं है, आपके आसपास नहीं है। यानी कि न केवल आप अपने प्रोफेशन को ही छोड़ना चाह रहे हैं बल्कि जिस वातावरण में आप अभी रह रहे हैं उन सब को छोड़कर उसकी तलाश में कहीं और जाना चाह रहे हैं। और विनोद खन्ना जी ने ऐसा किया क्योंकि वो जब फिल्मों में थे उस समय भी वो रजनीश के आश्रम में जाया करते थे। रजनीश का पूना में आश्रम है, मैं 2-3 बार वहां गया हुआ हूं, शायद आप लोगों ने भी देखा हो। वहां वो जाते थे और बाद में जब रजनीश ने अमेरिका के ओरे गांव में अपना रजनीशपुरम एक पूरा का पूरा नगर बसाया तो वहां विनोद खन्ना चले गए, 5 साल वहां रहे, वहां के जीवन को अपनाया। इसके बाद वहां भी मन नहीं लगा, या कह लीजिए उन्हें वो शांति नहीं मिली, और फिर वह वे लौटे और फिर से फिल्मी जगत में आए और फिर उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, यानी कि जहां से वो गए थे वहीं से वे लौटकर वापस आ गए। ये उनके जीवन की कहानी थी। तब तक उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया था, बट नेचुरल है कि उन्होंने अपने ढंग से फैसला लिया होगा कि उनको क्या पता था कि संन्यास के बाद ये वापस आएंगे। और इसके बाद विनोद खन्ना जी ने फिर से शादी की। तो अगर विवाह उनकी अशांति का कारण था तो फिर से शादी नहीं करते, यानी कि परिवार भी उनको चाहिए था, यानी कि परिवार अशांति का कारण नहीं हो सकता है। उसी फिल्म में फिर से वो आए तो यानी कि प्रोफेशन भी, यानी फिल्म इंडस्ट्री उस अशांति का कारण नहीं हो सकती है, बल्कि यूं कह लीजिए कि फिल्म तो कम से कम थोड़ी कम आपाधापी वाली है, वो तो राजनीति में चले गए। अगर हम काम की प्रकृति को अशांति का कारण माने तो राजनीति तो बहुत ही घनघोर कह लीजिए कि द्वंद और छीना झपटी परेशानियों का क्षेत्र है, बहुत कठिन क्षेत्र है। मैं समझता हूं शायद राजनीति दुनिया का सबसे कठिन क्षेत्र है। कितनों के साथ आपको तालमेल बैठाना पड़ता है, क्या क्या नहीं सुनना पड़ता है और क्या क्या नहीं सुनाना पड़ता है। वहां वो गए। अब आप इन सारी सिचुएशन को देख करके एक फैसला कीजिए दोस्तों कि सच में शांति है कहां, कैसे मिलती है, क्या शांति के लिए हमें कहीं जाना पड़ेगा, या शांति वही है जहां हम हैं, उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, वो वही होती है, बस हमें उसे पाना पड़ता है। एक मैं आपको छोटा सा प्रसंग सुना रहा हूं मित्रों, जो मुझे बहुत ही टची, मतलब बहुत ही अभिभूत करने वाला लगता है, बहुत ही प्यारा प्रसंग मुझे लगता है। ये छोटा सा ही प्रसंग, लेकिन गहराई के दृष्टि में तो ये प्रशांत महासागर का भी प्रशांत महासागर है। आपको मालूम है कि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, गहरा महासागर भी। मित्रों हुआ ये कि शायद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहीं इसका वर्णन किया है, हो सकता है कि ये साहित्यिक वर्णन हो सच न हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन है बहुत अच्छा और हमें जानना भी चाहिए। मित्रों आपको मालूम है कि गौतम बुद्ध अपनी पत्नी और प्यारे से छोटे बच्चे को सोया छोड़कर रात में सोया हुआ छोड़कर चले गए, पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने फिर एक कविता लिखी यशोधरा के ऊपर, और उसकी लाइन है, यशोधरा अपनी सखियों से कह रही है, गौतम बुद्ध के चले जाने के बाद सखी वे मुझसे कहकर जाते तो क्या वे मुझको ही अपने इसमें बाधा पाते। हे सखी, अगर मुझे बता करके ही चले जाते वो तो क्या मैं उनके लिए बाधा बनती, कम से कम कहके तो चले जाते। वो तो चलिए गौतम बुद्ध लौट कर आ गए, मुलाकात हो गई, क्या पता था कि वो लौट कर आएंगे, जैसे विनोद खन्ना के बारे में क्या पता था कि वो फिर से लौट कर आएंगे, नहीं पता था, लेकिन वो तो आ गए। सखी वो मुझसे कहकर जाते, सोच करके देखे मित्रों कि इतने सरल शब्दों में कितना दर्द भरा हुआ, अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, अपने अंदर का दर्द वो बांट रही है, कम से कम इतना तो कर लिया होता कि मुझसे बता तो देते, सलाह मत लेते लेकिन बता तो देते। सोच करके देखिए, जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो अंदर से आप हिल जाएंगे, गनगना जाएंगे। तो मित्रों चलिए, गौतम बुद्ध लौट करके आए, और लौट कर आने के बाद भिक्षाम देही सुनकर जब यशोधरा दरवाजे पर आई तो देखती हैं कि एक व्यक्ति लगभग आप समझ लीजिए कि 40 साल का व्यक्ति, लगभग 30-35 साल होगा होगी उस समय उम्र गौतम बुद्ध की, हाथ में भिक्षा पात्र लेकर खड़ा है। पहचान गई वो कि ये गौतम बुद्ध है। उह, जो राजकुमार था जिस राज्य का, अभी राजा होता, जिन महलों में वो रहा है, जिनके आंखों के इशारे पर लोग काम करते थे, वही राजकुमार आज भिक्षा पात्र लेकर अपने ही घर के सामने खड़ा है, भिक्षा मांग रहा है, और वो भी किससे, अपनी पत्नी से। उस वातावरण को जरा सा सोचिए कि यशोधरा के ऊपर क्या बीती होगी गौतम बुद्ध को उस वेश में देखकर। फिर यशोधरा ने प्रश्न किया कि प्रभु ठीक है, जो होना था हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि पूछो यशोधरा। यशोधरा ने कहा कि आप मुझे ये बताएं प्रभु कि जो ज्ञान आपको यहां से जाने के बाद प्राप्त हुआ, आप वन में गए 12-13 साल तक, आपने तपस्या की, जगह जगह भटके, तो आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, अब तो आप सिद्धार्थ रहे नहीं, अब तो आप बुद्ध बन गए हैं, यानी कि बुद्धिमान बन गए हैं, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए कि जो ज्ञान आपको यहां से जाने के बाद कहां कहां आप रहे वहां प्राप्त हुआ, क्या वो ज्ञान आपको यहां प्राप्त नहीं हो सकता था। गौतम बुद्ध ने तुरंत उत्तर दिया कि नहीं यशोधरे, यहां भी प्राप्त हो सकता था, यहां प्राप्त हो सकता था। यशोधरा चौंक गई क्योंकि उनको इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी कि गौतम बुद्ध ये उत्तर देंगे। अरे बाप रे, जब यही प्राप्त हो सकता था तो प्रभु आप गए क्यों? जब यही प्राप्त हो सकता था, इतनी तकलीफ झेलने की और मुझे इतनी तकलीफ देने की जरूरत क्या थी, यह यशोधरा ने पूछा। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि यशोधरे, वहां जाने के बाद ही तो मुझे इस बात का ज्ञान प्राप्त हुआ है कि वह ज्ञान यहां भी मिल सकता था। सोच करके देखिए दोस्तों, ये पूरे के पूरे इस कथा का सार है। वहां जाने के बाद ही मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि वो मुझे यहां भी मिल सकता था। मित्रों, बस कुल मिलाकर यही आज का मेरा लाइफ मैनेजमेंट का आधार है, केंद्र है। हम अगर शांति चाहते हैं तो वो यही है और अभी है, हम जो कर रहे हैं उसी में है। अगर हम आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो वो वही है जहां हम हैं, और जो हम कर रहे हैं उसी में आध्यात्मिक जीवन है। अगर धर्म कुछ है तो इसी में है जो हम कर रहे हैं, बस करने का तरीका बेहतर हो और उसके पीछे जो भावना है उदात्त हो। उदात्त भावना और करने का बेहतर तरीका किसी भी कर्म को धर्म में तब्दील कर देती है, अशांति को शांति में बदल देती है, और जिसे हम भौतिक जीवन कहते हैं उस भौतिक जीवन को अपने स्पर्श के द्वारा आध्यात्मिक जीवन बना देती है। इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। भले ही विनोद खन्ना जी ने आकर के इसके बारे में कोई ऐसा स्टेटमेंट न दिया हो, अगर दिया भी हो तो शायद हम लोगों को मालूम न हो, लेकिन अपने जीवन की प्रणाली के द्वारा, जीवन की प्रक्रिया के द्वारा उन्होंने यही तो सिद्ध किया कि नहीं, यही था शांति, मुझे यही मिल सकती थी इसी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा ही हो सकता है। मैं अब ट्राई करके आ गया हूं और मुझे अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, मैं फिर से वही हूं जहां मैं गया था। तो मित्रों ठीक है, उन्होंने, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के 12 साल इसके लिए खपाए, विनोद खन्ना जी ने 5 साल इसके लिए खपाए। मुझे लगता है कि अब हमें तो खपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास यह ज्ञान पहले से ही उपलब्ध है, हम जान रहे हैं, तो जानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं रह गई है। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, और अपने इन्हीं शब्दों के साथ में, इस अपेक्षा के साथ अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगा कि आप मेरी बात पर थोड़ा विचार करेंगे, और विचार करने के बाद अगर हो सके तो मुझे कुछ आपके जब नए विचार आए तो उससे अवगत भी कराएंगे। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।